पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से शादी का विरोध करती है, लेकिन रुद्र उसे जबरदस्ती मंडप में ले जाता है। इस अध्याय में रुद्र रूही को मंगलसूत्र पहनाता है और उसकी मांग में सिंदूर भरता है। रूही रुद्र से शादी का विरोध करती है, रुद्र रूही को किस करता है, फिर उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाता है। दिशा और देवांश के बीच बातचीत होती है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 63। अब आगे। इतना बोल वे बिना देवांश की आगे की बात सुने गुस्से में अनाथाश्रम की अंदर चली जाती है। वहीं देवांश दिशा की बात सुनकर गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां बना लेता है। देवांश दिशा को जाते हुए देख गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए बोला, गुड गर्ल, मुझसे दूर जाकर तो दिखाओ। तुम्हारी टांगें न तोड़ दी तो मेरा नाम भी देवांश सिंघानिया नहीं। भले ही मैं अभी शांत हूँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है गुड गर्ल कि मैं तुम्हें तुम्हारी मनमानियां करने दूंगा। मैंने अब तक तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी गुड गर्ल, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार से अपना बनाना चाहता हूँ, इसलिए अब तक मैं इतना शांत हूँ। पर अगर तुम फिर भी नहीं मानी तो मुझे मजबूरन वे करना होगा जो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो जाए पर मैं तुमसे दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ भी कर लो गुड गर्ल, लेकिन लास्ट में तुम्हें मेरे पास मेरे करीब ही आना होगा। इतना बोल वे गाड़ी में बैठ गाड़ी स्टार्ट कर सिंघानिया विला के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में रुद्र के कमरे में रुद्र रूही को बेड पर लेटा खुद उसके बगल में लेट अपने एक हाथों से टेक लगाए रूही के चेहरे को प्यार से देखने लगता है। कुछ देर यूं ही देखने के बाद उसकी नज़र रूही के कपड़ों और गहनों पर पड़ती है, जिसे देख रुद्र खुद से कहता है, मुझे रू के गहने और कपड़े बदलने होंगे वरना रू सही से सो नहीं पाएगी। इतना बोल वे बेड से खड़ा होता है और अपनी एक ब्लैक कलर की शर्ट लेकर आता है। उस शर्ट को एक साइड रख वे सबसे पहले रूही के गले से गहने से ज्वेलरी निकालता है। उसके बाद उसके गले को हल्का सा चूमते हुए उसके कान की बाली निकालता है और फिर उसके कान पर ही हल्का सा चूमता है। इसी तरह वे रूही के सारे गहने को एक एक कर बहुत ही आराम से निकाल देता है। उसके बाद रूही को देखता है, वे सारे गहने उतारने के बाद और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद रुद्र रूही के दुपट्टे को उसके शरीर से अलग करता है। फिर वे रूही के पास बैठ रूही के बंद आंखों को देख एक जुनून के साथ बोला, माई इनोसेंट रू, तुम्हें नहीं पता तुम्हें इस हाल में देख मैंने किस तरीके से खुद को कंट्रोल किया है। अगर तुम इस टाइम होश में होती तो मुझे अपने करीब आने से तुम बिल्कुल भी नहीं रोक सकती थी। पर रू, तुम ये मत सोचना कि आज की तरह मैं हमेशा तुम्हें यूं ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं दूसरों की चीज़ों पर हक जमाता नहीं हूँ और जो चीज़ मेरा होता है उस पर से कुछ भी क्यों ना हो जाए मगर मैं अपना हक छोड़ता भी नहीं हूँ। इतना बोल वे अपने रूम की सारी लाइट को बंद कर एक डिम लाइट ऑन करता है और अपने आंखों को बंद कर रूही को हल्का सा उठा अपने सीने से लगा उसकी ब्लाउज की डोरी खोलता है और रूही के ब्लाउज को उससे अलग कर अपनी शर्ट उसे पहना देता है। फिर रूही के लहंगे की डोरी खोल उसका लहंगा भी उससे अलग करता है। फिर रूही को प्यार से लेटा अपनी आंखें खोलता है और रूही को देखता है। उसकी रूह उसके ड्रेस में उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाए बेहद प्यारी लग रही थी। रूही को देख वे अपने शर्ट के बटन खोल अपने शर्ट को उतार देता है। फिर रूही के होठों पर हल्का सा किस कर रूही के बगल में लेट उसे अपनी बाहों में ले सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी के साथ कुछ ही देर में वे गहरी नींद में चला जाता है। अगली सुबह सिंघानिया विला में सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे और कुछ के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। आज परी और अर्जुन भी जल्दी उठ हॉल में आ गए थे क्योंकि उन्हें भी रूही की काफी चिंता हो रही थी। उनकी नज़र बार बार ऊपर की तरफ ही जा रही थी क्योंकि सुबह के 7 बज गए थे। ना ही उन्हें रूही आती हुई दिखाई दी, ना ही उनका वे शैतान भाई जो सुबह 5 बजे ही उठ जाता था, लेकिन आज उसका कुछ पता ही नहीं है। अर्जुन अब तक खुद को संभाल लिया था और ये मान लिया था कि रूही अब से उसके भाई की बीवी और उसकी भाभी है। सुभनजी सबको चाय देते हुए रूही की चिंता करते हुए बोली, पता नहीं रूही बिटिया कैसी होगी, इतना समय हो गया अब तक वे नीचे भी नहीं आई। सुमन की बात सुनकर कामना बोली, अरे भाभी अब वे महारानी नीचे आएगी भी क्यों, जब उसे इतना आलीशान कमरा और इतना हैंडसम और अमीर पति इतनी आसानी से जो मिल गया है, आराम से सो रही होगी। वैसे भी उस अनाथ आश्रम में जमीन पर ही सोती होगी और यहाँ इतना मुलायम बिस्तर पर सोने से कहाँ उसकी नींद खुलने वाली है। अब तो वे बस राज करेगी यहाँ पर। इन जैसी गरीब लड़कियों की यही तो आदत है, पहले अपनी खूबसूरती के जाल में अमीर लड़कों को फंसाओ फिर आराम से बैठकर वहाँ राज करो। कामना ने इतना बोला ही था कि प्रीता कामना को चुप करवाते हुए हल्के गुस्से में बोली, कामना तू चुप हो जा, हर लड़की एक जैसी नहीं होती और रूही तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। देखा नहीं तुमने कि रूही खुद भी ये शादी नहीं करना चाहती थी मगर रुद्र की जबरदस्ती की वजह से उसे ये शादी करनी पड़ी। अपनी माँ की बात सुनकर कामना मुंह बनाते हुए बोली, माँ आपको हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। रही बात रुद्र की जबरदस्ती की तो वे सब उस लड़की का नाटक था। मैं इन जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, ये सब उनकी ट्रिक होती है लड़कों को अपनी ओर आकर्षित करने का। कामना की बात सुनकर वहाँ पर बैठे धीरज, परी, अर्जुन, प्रीता, सुमन सभी को काफी गुस्सा आता है पर कोई कुछ भी नहीं बोलता। जिसे देख परी गुस्से में कामना को कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसके कानों में रणविजय जी की आवाज पड़ती है, जो अपनी कड़क आवाज में सभी को देख कहते हुए, रूही जैसी भी हो पर अब वे हमारे परिवार की बहू है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे परिवार की बहू के बारे में कोई उल्टी सीधी बात कहे, इसलिए आगे से इस बात पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। फिर सुमन की तरफ देखते हुए बोले, सुमन बहू, जब रूही बेटा नीचे आ जाए तो जो शादी के बाद रस्में होती हैं वे उनसे करवा लेना। रणविजय जी की बात सुनकर सुमन अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के रूम में, इस समय रुद्र और रूही एक दूसरे से लिपटे सुकून से सो रहे थे। जहाँ रात में रुद्र रूही को अपनी बाहों में लेकर सोया हुआ था, वहीं सुबह उल्टा रूही रुद्र से ऊपर उसके बिल्कुल लिपटी हुई सोई हुई थी। रूही के दोनों पैर रुद्र के पैरों के ऊपर, उसका एक हाथ रुद्र के सीने पर था और वे अपना चेहरा रुद्र के गर्दन में छिपाए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह आराम से सो रही थी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं और वे अपना चेहरा रुद्र के सीने पर रगड़ने लगती हैं,
जिसके रुद्र की आंखें एक झटके में खुल जाती है और वे अपनी नीली आंखों से एक टक रूही को देखने लगता है।